स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 19 जुलाई दिन मंगलवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। गुजरात में दलितों की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद आज राज्य भर में हिंसा और प्रदर्शन, दो लोगों की मौत।
नरेंद्र मोदी के पूरे शासनकाल के दौरान जो मनुवादी ब्राह्मणवादी शक्तियां है उनकी धौंस दलित के ऊपर और भी बढ़ गई थी।
भारत प्रशासित कश्मीर में ताजा हिंसा में 3 लोगों की मौत, कश्मीर घाटी में कर्फ्यू जारी। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने कहा, तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद देश को अपनी सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित करने की जरूरत। सुनिएगा विशेष रिपोर्ट, क्या प्रियंका गांधी के राजनीति में उतरने का यही सही वक्त है?
प्रियंका गांधी से पूरा उम्मीद है, जिस तरह इंदिरा गांधी ने इस देश का विकास किया और अमेठी का विकास हुआ, राजीव जी ने किया अमेठी का विकास, तो इसमें कोई दो राय।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। गुजरात के वेरावल में दलितों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के और दलितों के उग्र प्रदर्शन के बाद सौराष्ट्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस के अनुसार वेरावल में कथित शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पिछले हफ्ते कुछ दलितों को तब पीटा था जब वो जानवर की खाल उतार रहे थे। घटना के विरोध में दलित समुदाय ने आज राज्य की कई जगहों पर प्रदर्शन किए। नाराज प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई, जिसमें एक कांस्टेबल की मौत हो गई। जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले एक दलित की भी मौत हो गई। सोमवार को भी दलितों ने उग्र प्रदर्शन किए थे और पुलिस के अनुसार 7 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने जांच के आदेश दिए थे और 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। हरियाणा के रोहतक में 3 साल पहले सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई छात्रा के दोबारा बलात्कार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अब भी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में वही आरोपी शामिल हैं जिन्होंने 2013 में भी इसी छात्रा के साथ बलात्कार किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बलात्कार के बाद बेहोशी की हालत में छात्रा को सुनसान इलाके में छोड़ दिया था। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी छात्रा और उसके परिवार पर 3 साल पहले हुए दुष्कर्म के केस को वापस लेने और अदालत के बाहर समझौता करने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन छात्रा और उसके परिवार वाले नहीं माने। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक केपी सिंह ने बताया,
13 तारीख को ये दुर्घटना या अपराध जिसकी सूचना लड़की ने दी वो घटित हुआ और उस पर तत्परता के साथ हमने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया है। बाकी 2 लोगों को भी शीघ्र ही उसमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आश्वासन भी देता हूं कि इस मामले में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई अभियुक्तों के खिलाफ बनती होगी कानून के मुताबिक, वो हम कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक केपी सिंह के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने कहा है कि शुक्रवार को सेना की टुकड़ी की तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद तुर्की को अपनी सुरक्षा पुख्ता करने की जरूरत है। उन्होंने वादा किया कि इस तरह की कोशिशों करने वालों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। यिल्दिरिम ने कहा कि साजिश के नेता इस्लामिक धार्मिक गुरु फतेउल्लाह गुलेन के प्रत्यर्पण को लेकर अमरीका को जानकारियां भेज दी गई हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि तुर्की कानून के मुताबिक चल रहा है, साथ ही लोगों से गुहार लगाई कि वो बदले की भावना से काम ना करें। तख्तापलट की कोशिश के बाद हजारों सैनिक, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है और कई को बर्खास्त भी कर दिया गया है। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी वाडा ने 4 साल से रूस में राज्य प्रायोजित डोपिंग कार्यक्रम के साक्ष्य मिलने के बाद अगले महीने होने वाले रियो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक प्रतियोगिताओं में रूस को पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य वाडा की सिफारिशों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा कि आपने अभी अभी समाचारों में सुना, भारतीय राज्य गुजरात के वेरावल में दलितों की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद पूरे राज्य में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि वेरावल में कथित रूप से शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पिछले हफ्ते कुछ दलितों की तब पिटाई कर दी थी जब वे जानवर की खाल उतार रहे थे। इस घटना से नाराज दलित समुदाय के लोगों ने आज राज्य भर में प्रदर्शन किया। सुनिए अहमदाबाद से अंकुर जैन की रिपोर्ट।
गौरक्षा के नाम पर दलितों की पिटाई का मामला गुजरात में हिंसक रूप लेता जा रहा है। सोमवार देर शाम 2 बसों को आग लगा दी गई थी और दलित समाज के 500 लोग राजकोट गोंडल हाईवे पर धरने पर बैठ गए थे। वहीं प्रदर्शन का दौर मंगलवार को दिन भर गुजरात के अहमदाबाद, जूनागढ़, राजकोट, भावनगर, सुरेंद्रनगर, सिद्धपुर और सौराष्ट्र के कई इलाकों में चलता रहा। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश भी की, जिसमें जूनागढ़ में एक दलित युवान की मृत्यु भी हुई। दलित कार्यकर्ताओं ने कल गुजरात बंद का ऐलान करते हुए कहा है कि गुजरात में मृत पशु उठाने का काम अब से दलित समाज के लोग नहीं करेंगे। अहमदाबाद में धरने पे उतरे हसमुख भाई ने कहा, कल से गुजरात में कोई भी दलित मृत पशु नहीं उठाएगा, जिसके घर पशु मरा है अब वही उठाए, हमें अछूत नहीं रहना। दलितों का गुस्सा तब भड़का जब गुजरात के ऊना तालुका का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। इस वीडियो में गांव के बीच चार दलित युवाओं को गौ रक्षा के नाम पर बेरहमी से पीटा जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इसकी जांच CBI को सौंप दी है। इस मामले पर पत्रकारों से आनंदीबेन ने कहा, ये बहुत ही दुखद घटना है और सरकार ने इस मामले में हर जरूरी कदम उठाया है। जिन पुलिस वालों ने ढील बरती है उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। मामले की जांच अब CBI को सौंप दी गई है। हालांकि गुजरात में दलितों का आक्रोश थमता नहीं दिख रहा है। गुजरात के अमरेली में हिंसक भीड़ ने पुलिस काफिले पर हमला किया जिसमें एक कांस्टेबल की मृत्यु हुई है। वहीं अहमदाबाद समेत कई इलाकों में पुलिस ने दलित कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। गुजरात कांग्रेस के नेता और दलित कार्यकर्ता नौशाद सोलंकी कहते हैं कि गुजरात सरकार को अब दलित समाज से माफी मांगनी होगी।
जब से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन चालू हुआ है तब से जातिवादी लोगों का मनोबल बहुत ही बड़ा बढ़ चुका है, उनकी हिम्मत बहुत बढ़ चुकी है और इन गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं। दलितों की एक प्रमुख मांग रही है कि भारतीय जनता पक्ष की सरकार दलितों की माफी मांगे।
गुजरात में दलित कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP के खिलाफ नारे लगाए। वहीं गुजरात BJP के अध्यक्ष विजय रूपाणी ने पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया।
कल से संसद चालू हुई है इसलिए कांग्रेस, मायावती जी वगैरह लोग उसको पॉलिटिकलाइज बना रहे।
पर बहरहाल गुजरात में ये मामला थमता नहीं दिख रहा। कल गुजरात में दलित पैंथर द्वारा बंद के ऐलान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अंकुर जैन, BBC अहमदाबाद।
सवाल उठता है कि एक वीडियो के सामने आने के बाद दलितों का गुस्सा इतने उग्र रूप में क्यों फूटा है, यही जानने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश जोशी ने बात की दलित अधिकार मंच से जुड़े वकील जिग्नेश मेवानी से।
देखिए, हिंदुत्व की लेबोरेटरी गुजरात में कई सालों से दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है। खास करके नरेंद्र मोदी के पूरे शासनकाल के दौरान जो मनुवादी ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं उनकी ध्वंस दलित के ऊपर और भी बढ़ गई थी। तो ये घटना को मैं आइसोलेशन में न देखते हुए पिछले कई वर्षों से उनका जो उत्पीड़न बढ़ गया है तब जाके उनकी धीरज खुद गई है, वो पेशेंस घुमा रहे। मामला ये हुआ था कि एक हफ्ते पहले कुछ दलित लड़के एक मरी हुई गाय का चमड़ा उधेड़ रहे थे जो उनका परंपरागत काम रहा है। तब जाके हमारे सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने शिवसेना वालों को इन्फॉर्म किया और शिवसेना वालों ने इन लड़कों को पकड़ा, उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया कि आपने गाय को मारा है और मारने के बाद आप ये चमड़ा उधेड़ रहे, जबकि हकीकत ये थी कि वे लोग मरी हुई गाय का चमड़ा उधेड़ने का वो अपना परंपरागत काम कर रहे थे। फिर उन लड़कों को ले जाकर बाजार में ले जाया गया, उनको घसीटा गया, पीटा गया, दूसरी जगह पर ले जाया गया, वहां पे रोड पे उनको घसीटा गया, वहां पे पीटा गया, वहां से उनको ऊना के बाजार में ले गए जो गुजरात के गीर सोमनाथ जिला का ऊना तहसील है, वहां की बाजार में बस स्टैंड के करीब बिन दहाड़े भर चौराहे लोगों के बीच में उनको एक गाड़ी के साथ कर जमकर पीटा गया। उतना पीटा गया कि करीब करीब उनकी खाल उधड़ गई। तो ये जब पूरे गुजरात में उसके वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया के जरिए और न्यूज चैनल्स के जरिए, तब दलितों का गुस्सा बाहर आया। और ये जो ऊना की बात कर रहा हूं, वही ऊना में 2 साल पहले एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया था। उसी ऊना के कुछ किलोमीटर दूर गोंडल में कस्टोडियल डेथ का मामला बाहर आया जिसमें एक दलित लड़कों को किसी जेलर ने, ऐसा कहा जाता है कि जहर दे दिया। एक हफ्ते पहले पोरबंदर के सोढ़ाना गांव में सरकारी जमीन खेदने के मामले को लेकर 35 लोगों ने मिलकर दलितों की हत्या कर दी थी। 2 साल पहले अहमदाबाद में भी अमित चावड़ा नाम के एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया। तो दलित इन पूरे उत्पीड़न की घटना से त्रस्त हो चुके हैं। अब उनको लग रहा है या तो वो कानून हाथ में ले या तो सुसाइड कर ले।
ये बात कभी सामने नहीं आ पाती है, नहीं आम छवि में नहीं थी कि दलितों में इतना गुस्सा है वहां पर।
ये कई सालों से दबा हुआ गुस्सा है। गुजरात के 1,500 से ज्यादा गांव में 96 टाइप्स की अनटचेबिलिटीज पाई गई, 55,000 से ज्यादा दलित माथे मेला ढो रहे हैं।
जब 7 दलितों ने आत्महत्या की कोशिश की, मारपीट कथित तौर पर जो हुई थी उसके बाद, अब ये फोटो कुछ आ रही है कि जिला मुख्यालय के सामने, कलेक्टरेट के सामने मरे हुए जानवर फेंके गए, कुछ गायों के शव फेंके गए हैं और दलितों ने फेंके हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए। ये दलित युवकों ने फेंके हैं, ये फैसला किसने किया था?
मेरी जो सूचना है उसके मुताबिक स्थानिक दलितों का ये रोष है कि यदि हम लोग मरी हुई गाय या मरे हुए पशु को निकाल करने का, साफ करने का काम है हम लोग वो कर रहे हैं, यदि उसके श्रम का मूल्य समझने के बजाय यदि हमारी खाल उतारने की कोशिश की जाएगी तो हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता कि जो मरे हुए ढोर, मरे हुए पशु हमारे पास आएंगे वो हम जिला प्रशासन की कचहरी में डालेंगे और सरकार को कहेंगे अब करिए व्यवस्था उसे निकाल करने की।
किस राजनीतिक पार्टी से आपको उम्मीद है?
नहीं, राजनीतिक पार्टियों से उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद है दलित आंदोलन से, दलित एक्टिविस्ट से।
कांग्रेस से आपको कितनी उम्मीद है? कांग्रेस विपक्षी पार्टी है वहाँ पे।
कांग्रेस से हमें कोई उम्मीद नहीं, कांग्रेस के शासन के दौरान भी करीब करीब ऐसी परिस्थिति रही थी, कांग्रेस के शासन के दौरान भी उत्पीड़न के मामले इतने ही हुए थे, वो निकम्मे साबित हुए एक विरोध पक्ष के तौर पे, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है।
ये थे दलित अधिकार मंच से जुड़े वकील जिग्नेश मेवानी, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज हैं और कह रहे हैं कि दलित आंदोलन की जरूरत है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आरएसएस की प्रतिक्रिया जानने के लिए मैंने बात की प्रोफेसर राकेश सिन्हा से।
देखिए, कहीं भी दलितों के साथ अन्याय होता है वो गलत है और इस सामंती और जाति व्यवहार पर कार्रवाई करनी चाहिए समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा। और देश के कई हिस्सों में आज भी दलितों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है, यह एक सच है। और इस हकीकत को ही स्वीकार करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कहा था कि एक मंदिर, एक शमशान और एक कुआं, इसका अर्थ है कि समाज में पूरी तरह से समरसता के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। संवाद और संघर्ष दोनों ही इसका एक रास्ता है।
राकेश जी, आप समरसता की बात कर रहे हैं, आप मोहन भागवत जी को कोट कर रहे हैं, लेकिन ये घटना कहा जा रहा है कि शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम दिया है। एक तरफ आरएसएस गोवंश की रक्षा, गोमूल की रक्षा की बात करती है, मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और दूसरी तरफ दलित जो कि हिंदू हैं वो उनके साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, तो सामाजिक समरसता कहाँ है?
देखिए, आज समाज में समस्या है, तभी तो मोहन जी ने ऐसी बात कही है। और मैं तो मान रहा हूँ कि ये हकीकत है कि समाज में एक दलितों के एक बड़े वर्ग के साथ आज भी उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और हमें इस हकीकत को स्वीकार करके सामाजिक परिवर्तन के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, कानून व्यवस्था जो कोई भी हाथ में लेता है, कानून व्यवस्था ही लोकतंत्र का सार है। आज कानून व्यवस्था हम किसी के खिलाफ लेंगे, कल वो हमारे खिलाफ लेगा, इसलिए हर किसी को ये मानना चाहिए कानून व्यवस्था का वो हाथ नहीं ले सकता है, जो कोई भी लेता है उस पर कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए बिना किसी भेदभाव का, ना किसी को प्रिविलेज देना चाहिए, ना किसी को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए इस मामले में।
लेकिन ये तो सिद्धांत की बात हुई, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर ये चीज़ कार्यरूप में नजर नहीं आती है। ये तो पार्टी की तरफ से एक डिक्टेट जारी किया जा सकता है या संघ कह सकती है कि इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, सामने नहीं आनी चाहिए।
देखिए, आपने एक ठीक सवाल उठाया है, लेकिन क्या आरएसएस या बीजेपी के लोगों ने ऐसा काम किया है? देखिए, समाज में ऐसी ताकतें हैं जो आज सामंती व्यवहार करती हैं, और जब न्यायालय कानून इसकी जांच करे, एक दायरे में काम करे, और उस घटना के बारे में मैं स्वयं अभी परिचित नहीं हूँ, आपने जो कहा उसी पर मैंने प्रतिक्रिया दी है। और जहाँ तक दलितों का सवाल है, मैं इस बात को, हकीकत को स्वीकार करता हूँ कि भेदभाव की घटना तो है, और इस भेदभाव की घटना के लिए आरएसएस ही एक ऐसा संगठन है जो बिना किसी शोरगुल किए, बिना प्रचार प्रसार किए काम कर रहा है, जो जमीन पर दिखाई पड़ रहा है।
ये थे आरएसएस से जुड़े राकेश सिन्हा। गुजरात में हिंसा हो रही है तो उधर जम्मू कश्मीर में भी 11 दिन से जारी हिंसा और तनाव थमने का नाम नहीं ले रहे। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच ताज़ा हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के बाद हो रहे उनकी मौत हो गई थी, उसके बाद से हिंसात्मक प्रदर्शनों में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। ताज़ा हालात की जानकारी के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बात की श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से।
जी बिल्कुल, माहौल तो बिल्कुल वैसा ही तनावग्रस्त बना हुआ है। पूरी घाटी के 10 जिलों में कर्फ्यू है, कोई ढील नहीं दी गई आज भी, और उसका एक कारण है क्योंकि रोज कोई ना कोई घटना घटती है। जैसे कल देर शाम को जो है दक्षिणी कश्मीर के काजीगुंड इलाके में फायरिंग की एक घटना घटी, जिसमें बताया जाता है कि जो सेना है उसकी एक पेट्रोलिंग पार्टी जा रही थी, तो लोगों ने हूटिंग की और उन्होंने उन पर फायरिंग की, जिसमें 2 महिलाएं जो हैं वो पहले घायल हो गई और उसके बाद वो हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई, उसमें एक युवा भी मारा गया है। तो कुल मिलाकर कल से अब तक 3 फ्रेश डेथ्स हुई हैं, जिससे दक्षिणी कश्मीर में जो पहले ही तनाव बना हुआ था वो तनाव की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है।
रियाज, अलगाववादियों की तरफ से जो बंद की कॉल दी गई थी वो कॉल अभी भी जारी है या उसमें कुछ तब्दीली हुई है?
जी, उन्होंने जो है पहले तो 3 दिन की कॉल दी थी जो कल समाप्त हो गई शाम को, और शाम को उनका एक वक्तव्य आया, ज्वाइंट स्टेटमेंट सभी अलगाववादी नेताओं का, और उन्होंने 4 दिन का कैलेंडर दिया कोई 22 तारीख तक। उसमें जो है बिल्कुल नियमित रूप से उन्होंने हड़ताल की अपील की है और 20 तारीख को काला दिवस मनाने की अपील की है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने भी काला दिवस की कॉल दी है तो उसके समर्थन में उन्होंने जो है ये काला दिवस की कॉल दी है। इसमें बीच में उन्होंने कहा है कि सिर्फ जो है जुमेरात को जो 2 बजे के बाद लोग जो हैं 2-4 घंटे के लिए बाहर निकल सकते हैं ताकि वो जो घरेलू सामग्री है उसकी खरीदारी कर सकें।
जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात की जानकारी दे रहे थे रियाज मसरूर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने कहा है कि शुक्रवार को हुई तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद तुर्की को अपनी सुरक्षा 100% सुनिश्चित करने की जरूरत है। सरकार जिस आंदोलन पर तख्ता पलट की कोशिश का आरोप लगा रही है, यिल्दिरिम ने उसे जड़ से मिटा देने का वादा किया है। यिल्दिरिम ने कहा कि आंदोलन के नेता इस्लामिक धर्मगुरु फतहुल्लाह गुलेन के प्रत्यर्पण के लिए अमरीका को डोजियर भेज दिए गए हैं। पूरा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने मुख्य विपक्षी सीएच पार्टी से बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तुर्की ऐसा देश है जहां कानून का राज चलता है।
तख्ता पलट की कोशिश के मद्देनजर कई कदम उठाए गए हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति कायम रही है और लोकतंत्र की जीत हुई है। तुर्की में कानून का राज है, हर किसी चीज का समाधान कानून के दायरे में होगा और जिन्होंने गलती की है उन्हें सजा मिलेगी। कोई बदला लेने की भावना नहीं रख सकता, ये इस देश में मंजूर नहीं जो कानूनों से चलता है।
तुर्की में अधिकारी शुक्रवार को हुई तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के समर्थकों की धरपकड़ में जुटे हैं। तख्ता पलट की कोशिश में शामिल रहने वाले संदिग्ध अधिकारियों की सफाई करने की मुहिम में गृह मंत्रालय ने अब तक करीब 18,000 पुलिस और सेना के अफसरों और जजों को निलंबित या गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोवान और उनके समर्थक अमरीका में रह रहे धर्मगुरु फतहुल्लाह गुलेन पर इस तख्ता पलट की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। अर्दोवान ने गुलेन के प्रत्यर्पण के लिए अमरीकी अधिकारियों से अपील की है। अमरीका के पेनिसिल्वेनिया में बात करते हुए फतहुल्लाह गुलेन ने इस तख्ता पलट में किसी भी भूमिका से इनकार किया है।
वास्तव में ये आरोप लगाने वाले की जिम्मेदारी है कि वो उद्देश्य और जरूरी सबूत मुहैया कराए। तख्ता पलट की कोशिश की साफ तौर पर निंदा कर हमने अपनी स्थिति पहले ही सामने रख दी। मैं हमेशा से घरेलू राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ रहा हूं। इस घटना के बाद भी मैंने इसकी निंदा की और मैं इसे तुर्की के खिलाफ देशद्रोह मानता हूं। अगर मुझे मौका मिला होता, अगर इस घटना से पहले जानकारी दी जाती तो मैंने अपील की होती। अगर आप कमाली के विचारों को मानते हैं, अतातुर्क से हमदर्दी रखते हैं, तो अतातुर्क के मूल्यों के सम्मान के लिए ऐसा मत कीजिए।
राष्ट्रपति अर्दोगान ने इस संभावना से फिर इनकार कर दिया है कि अगर संसद से मंजूरी मिल जाती है तो वे तख्ता पलट की कोशिश में शामिल रहे लोगों के लिए मौत की सजा फिर से बहाल नहीं करेंगे।
जानकारी दे रहे थे अमर शर्मा।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा अरसे तक देश में सरकार चलाई है और पार्टी की कमान नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही रही है। जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, संजय और राजीव गांधी के बाद सोनिया और राहुल गांधी तक सभी ने लोकसभा में पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही चुना है। पिछले लगभग 40 वर्षों से अमेठी और रायबरेली संसदीय क्षेत्र गांधी नेहरू परिवार के गढ़ रहे हैं, जहां से राहुल और सोनिया मौजूदा सांसद हैं। इन दोनों ही जगहों से अक्सर प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारने की मांगें तेज होती रही हैं। राजनीति में कूदने की मांग के बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या प्रियंका के इस फैसले में अब देर हो रही है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने इन्हीं पहलुओं को टटोलने की कोशिश की है।
प्रियंका गांधी 9 वर्ष की थीं जब 1981 में राजीव गांधी अपना पहला चुनाव लड़ने अमेठी पहुंचे थे। इस वाकये के 18 साल बाद सोनिया गांधी पहुंची अपना चुनाव लड़ने और उनके इस फैसले में बेटी प्रियंका की सलाह भी शामिल थी। अमेठी के तिलोई इलाके में तब उनसे मिल चुके सुंदरलाल आज भी उनके सक्रिय राजनेता बनने का इंतजार कर रहे हैं।
उनको पूरे देश में जाना चाहिए, उनको प्रदेश में उन्हें बागडोर सौंपी जाए और प्रदेश का चुनाव उनके नेतृत्व में कराया जाए, क्षमता है उस लड़की में।
आप किसी भी समय रायबरेली या अमेठी लोकसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकल जाइए, ज्यादातर कांग्रेसी समर्थक सोनिया और राहुल से ज्यादा प्रियंका की बात करते हैं। शायद एक वजह प्रियंका का अपनी माँ और भाई के चुनाव प्रबंधन से जुड़ाव जान पड़ती है। तिलोई में ही किराने की दुकान चलाने वाले 48 वर्षीय लाल बहादुर खान से मुलाकात हुई।
नहीं, मुझे प्रियंका गांधी से पूरा उम्मीद है, जिस तरह इंदिरा गांधी ने इस देश का विकास किया और अमेठी का विकास हुआ, राजीव जी ने किया अमेठी का विकास, तो इसमें कोई दो राय, जनता का ये तो रुझान है। ये लोकसभा का चुनाव बता रहा है, जो 3.5 लाख करोड़ जीतता हो वो 1,10,000-15,000 जीते उसको मैं जीत नहीं मानता हूँ, ना मानना चाहिए।
लाल बहादुर अमेठी के पिछले आम चुनावों का जिक्र कर रहे थे जिसमें राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का मुकाबला कांटे का बताया गया था। एकाएक प्रियंका ने अपना पूरा दमखम अमेठी पर लगाया, लेकिन राहुल की जीत का फासला बहुत कम हो चुका था। अमेठी की तुलना में रायबरेली में प्रियंका गांधी का प्रभाव थोड़ा ज्यादा दिखता है। वजह शायद ये है कि सोनिया गांधी के चुनावों में बूथ मैनेजमेंट से लेकर गांवों का दौरा तक प्रियंका ही करती रही हैं। इन तमाम चुनावी दौरों में प्रियंका को दिन रात कवर किया है पत्रकार शैलेंद्र सिंह ने।
मतलब एक एक दिन में करीबन 17 से लेके 19 से 20 नुक्कड़ सभाएं वो करती रही, एनर्जी से शुरू होती है और लास्ट आते आते शाम का 6 बजते वो पर्सनालिटी इनकी जो बैरिकेटिंग जिसको आप बोलते हो उस बैरिकेटिंग पे टेक लगा के और फिर माइक का हैंडल इनके हाथ में होता है कॉर्डलेस, फिर बोलना चीज ऐसी आ जाती कि फिर ये स्पीच की जगह लोगों के साथ बात करती बैठ जाती है।
इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका चुनावी सभाओं में जबरदस्त भीड़ जुटा लेती हैं और मतदाताओं तक बेरोक टोक पहुंच भी जाती हैं। जो लोग प्रियंका की हाजिर जवाबी का लोहा मानते हैं उनमें सांसद संजय सिंह भी हैं, जो प्रियंका और राहुल गांधी दोनों में बराबरी के हुनर देखते हैं।
बेसिक ट्रेनिंग जिस तरह से बच्चों को होना चाहिए इस देश के बारे में वो इंदिरा जी दिया करती थी और बड़ा बहुत तेज पिकअप है इन दोनों भाई बहनों में।
पुराने कांग्रेसियों की राय ये भी है कि प्रियंका के साथ एक ही मुश्किल है और वो है कान की कच्ची होना। रायबरेली के रामसेवक चौधरी ने इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार प्रबंधन में दशकों काम किया, लेकिन 2012 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर उन्हें प्रियंका ने रायबरेली में बुलाया था।
हम वो आमने सामने बैठे तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप संगठन में मंत्री हैं, आपने कांग्रेस की मजबूती के लिए क्या किया। मैंने कहा कि अगर मैं आपको ये कहूँ, आप सबके कारण मैं संगठन में पदाधिकारी बनाया गया हूँ और असेंबली के चुनाव में जिन लोगों को टिकट आपने दिया है वो टिकट भी आपने दिए हैं, तो कारण स्पष्ट है कि वो इतने निकम्मे थे जिनको आपने टिकट दे दिया था कि उनको हम जिता नहीं सके, इससे वो बहुत नाखुश हुए क्योंकि मैंने इल्जाम उन्हीं पर लगा दिया।
अमेठी रायबरेली से सटे जायस में गांधी नेहरू परिवार के नजदीकी रहे मोहम्मद शकील जायसी अभी भी प्रियंका से मिलते रहते हैं और उन्हें भी लगता है प्रियंका को अपने पैर जमाने में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी।
मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेरे जैसे बुढ़े लोग इनके लिए उठें, वो उनसे रिपोर्ट लें तो भ्रमण करें देखें।
इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी ने कांग्रेसी नेताओं पर अपनी पकड़ भी बना रखी है। 2012 के विधानसभा चुनाव प्रचार की बात है, प्रियंका अपनी गाड़ी से बछरावा विधानसभा का दौरा कर रही थी। एक गांव में उनके स्वागत के लिए वहां के बड़े स्थानीय कांग्रेसी नेता मौजूद थे और विधायक भी थे। प्रियंका ने एकाएक विधायक साहब को देखकर अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। अपनी अगली सीट से पीछे मुड़कर गुस्से से तमतमाई प्रियंका ने उस नेता को करीब 10 मिनट तक डांटा और कहा कि आगे से मुझे आपके बारे में ऐसी शिकायतें न सुनाई पड़े, मैं सब जानती हूँ, और अब गाड़ी से मुस्कुराते हुए उतरिए। शायद इसी तरह के हुनर देखकर कांग्रेस पार्टी में एक धड़ा लगातार प्रियंका लाओ की मांग भी करता रहा है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई को भी लगता है कि प्रियंका के लिए चुनौती आसान नहीं होने वाली।
कांग्रेस के जो हालात हैं बाहर भी और अंदर, जो कांग्रेस के भीतर जो हालात हैं, वो प्रियंका गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अमेठी रायबरेली में भी अगर हम देखें तो वो चुनाव में जिस तरीके जो उनकी सरगर्मी रहती है और जिस तरीके के रिजल्ट आते हैं खासतौर से विधानसभा में, वो प्रियंका गांधी की जो एक लीडरशिप पे जो कांग्रेस जन को जो उम्मीदें हैं उस पे पूरे कसौटी पे खरी नहीं उतरती है।
जाहिर है कांग्रेस के सांसद और अमेठी के पूर्व राजा और गांधी परिवार के करीब करीबी माने जाने वाले संजय सिंह रशीद की दुबई की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं।
राजनीति में न कभी कोई चीज अर्ली होती न लेट होती है, जब हो तो वही सही समझ पे होती है। मुझे लगता है कि आज लोग महसूस कर रहे होंगे कि भाई प्रियंका जी एक्टिव हों तो राहुल को एक मदद करेंगी, राहुल को की मदद के लिए अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ ये फीलिंग ठीक है,
लेकिन खुद प्रियंका को कवर कर चुके पत्रकार शैलेंद्र सिंह की राय थोड़ी अलग है।
2007 का चुनाव आप लड़े तो रायबरेली और अमेठी में आप 10 में से 8 सीटें थी। उसके बाद जब आप 12 का चुनाव लड़े जिसकी पूरी गढ़ी प्रियंका ने की तो आपके पास केवल 2 बची।
तो जहां उत्तर प्रदेश में चुनावों का बिगुल बजने वाला है, कांग्रेस की आस फिर से प्रियंका पर टिक सी गई है। अमेठी और रायबरेली में तो प्रियंका का जादू चला है, लेकिन अगर वे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होती हैं तो इस फैसले में सिर्फ वो ही नहीं, शायद सोनिया और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
और अब खेल की खबरों के साथ आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में है। जी आदेश
जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाचक्र में वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने रियो ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में रूस को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की मांग की है, क्योंकि उसकी जांच में सोची शीतकालीन ओलंपिक 2014 और अन्य प्रतियोगिताओं में बड़े पैमाने पर सरकार समर्थित डोपिंग का पता चला। इससे साफ तौर पर ये पता चला पूरी जांच के दौरान कि जो भी खिलाड़ी डोप ले रहे थे दरअसल उन्हें सरकार का समर्थन हासिल था। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप, और अगर रशियन एथलीट रियो में नज़र नहीं आएंगे तो फिर आकर्षण बहुत कम होगा। अभी देखना है कि आने वाले दिन रूस के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उधर भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ अपने क्रिकेट जीवन की एक और नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं। अब मोहम्मद कैफ रणजी ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। उल्लेखनीय कि छत्तीसगढ़ की टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी में उतरेगी।
जी बहुत शुक्रिया आदेश इस पूरी जानकारी के लिए। जानी मानी गायिका मुबारक बेगम का सोमवार देर शाम मुंबई में निधन हो गया। 80 बरस की मुबारक बेगम बीमारी और तंगहाली से जूझ रही थीं। हिंदी गानों में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखने वाले हमारे श्रोताओं ने मुबारक बेगम का गाया बेहद चर्चित गाना कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी ज़रूर सुना होगा। 50 से 70 के दशक में उन्होंने शंकर जयकिशन, खयाम और SD बर्मन जैसे मशहूर संगीतकारों के साथ कई हिट गाने दिए थे। उनके योगदान को याद कर रही हैं स्वाति बख्शी।
राजस्थान में पैदा हुई मुबारक बेगम ने 1949 में आइए फिल्म से शुरुआत की और इसी फिल्म में लता मंगेशकर के साथ उन्होंने एक गाना भी गाया था, लेकिन मुबारक बेगम का सफर लता मंगेशकर की अप्रतिम कहानी से बिल्कुल जुदा रहा। 1950-60 के दशक में आर.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, खयाम और सलिल चौधरी जैसे संगीत निर्देशकों के साथ मुबारक बेगम को भी काम करने का मौका मिला, लेकिन 1980 तक आते आते सिलसिला 1-2 गानों तक सिमट कर रह गया। बढ़ती उम्र के बावजूद मुबारक बेगम स्टेज शो करती रही तब तक जब तक सेहत ने साथ दिया, लेकिन मुंबई शहर में एक भुला दी गई कलाकार के आखिरी दिनों के लिए ये आमदनी नाकाफी थी। दादी के साथ पलने बढ़ने वाली उनकी पोती सना शेख बताती हैं कि फिल्मों के ऑफर बंद होने के बाद माली हालत काफी खराब रही।
माली हालत को लेके तो जैसे काफी थी अभी, क्योंकि उनके शोज होते थे तो उसी कारण मतलब उसके थ्रू ही सारे उनको जो भी था फाइनेंशियली होता था, या फिर इधर उनके फैंस हैं जो उनको कभी कभी मदद कर देते थे। इंडस्ट्री से तो कोई भी नहीं आया, मतलब सलमान खान का जो ट्रस्ट है बीइंग ह्यूमन, उनके तरफ से उनको मेडिसिन मिल जाती थी उनके मेडिकल के वहाँ से हर मंथ,
और उसके अलावा कोई मदद नहीं।
नहीं,
और पुराने जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया उनके साथ कोई वास्ता था, वो लोग आते थे?
नहीं नहीं, कोई भी नहीं।
ये फिल्मी संगीत की बदलती हवा थी या इंडस्ट्री में टिकने के लिए हुनर से आगे की जरूरतें, वजह जो भी रही हो, लेकिन मुबारक बेगम भी कलाकारों की उस फेहरिस्त में शामिल हो गई हैं जिनके सफर का अंतिम पड़ाव एक कसक के साथ गुजरा।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। गुजरात में कथित गौरक्षकों के हाथों दलित युवकों की पिटाई की घटना के बाद मंगलवार को राजकोट जिले के बोंडल में प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर मरी हुई गाय फेंककर विरोध प्रदर्शन किया। मामले में अब तक 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हरियाणा के रोहतक में 3 साल पहले सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई छात्रा के दोबारा बलात्कार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अब भी फरार हैं। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने कहा है कि शुक्रवार को सेना की टुकड़ी की तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद तुर्की को अपनी सुरक्षा पुख्ता करने की जरूरत है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ दिनभर की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद होगी। नमस्कार।